सभी को सुप्रभात। आइए एक दूसरे को हेलो कहे और सुप्रभात कहे, थोड़ा सा आराम पाए, आरामदायी हो जाए। इतना अच्छा है आप सबको देखते हुए, मौजूद है आप।
अब
15 दिन हम दुबई में थे। आइए हम प्रार्थना करें पहले। और बाइबल में हमें बताया गया है कि जब किसान बीजों को बोता है तब वो अच्छे जमीन में गिरना अच्छा है। और इस सुबह जैसे हम इस वचन को सुनेंगे, हमारे हृदय को हम सही बनाना चाहते हैं, ताकि यह जो वचन है वो उस बीज की तरह हमारे हृदय में गिरेगा और बहुत फल लाएगा। पिता, इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, तेरा वचन कहता है हम सच को सुनेंगे और सच हमें आजाद करेगा। प्रभु यीशु, हम तुझसे इतना प्यार करते हैं। धन्यवाद, तू हमारे बीच में है और तू हमें भरना चाहता है, और उस प्रेम से तू हमें भरना चाहता है। धन्यवाद वो दर्शनों के लिए और उन वचन के लिए जो वचन में जीवन है, और इस सुबह हर एक जन वो जीवन पाएगा, यीशु मसीह के महान नाम में, आमेन। और पहले हम वचन पढ़ेंगे, और वह शुरुआत का वचन है, और बस वो पढ़ने के लिए हमें नहीं पढ़ना है, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक खास प्रतिज्ञा दिया है, और यह वचन आपने कई बार उसे सुना भी होगा, और यशाया के 43 के 18वें और 19 वचन में, और उस बैनर में वो वहां पर लिखा हुआ है, और वन नेशन के लिए परमेश्वर ने खास रूप से हमें बोला है, और वहां पर लिखा है, और उन बातों को याद मत करो जो प्रारंभ में घटी थी, क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूं, और वो जो बातें बीत गई है उसे भूल जाओ, और वो इतिहास की बातों में उस पर निर्भर ना रहो, क्योंकि मैं नई बातें करने वाला हूं। और 19वां वचन हमें बताता है, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है, और तूने इस पे बड़ी कृपा दिखाई की, और इस प्रकार से देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। और यहां पर परमेश्वर इज़राइल के लोगों को ही एक प्रकार से बात नहीं कह रहा है, लेकिन वन नेशन के लिए भी कह रहा है, एक भविष्यवाणी के तौर पर, तो पुरानी बातों को भूलने के लिए और पीछे हुई बातों में उन पर मत रहो, और पीछे जो हुआ है उनको भूल जाओ, और उन्हीं बातों पर ध्यान मत लगाओ, क्योंकि वो हमारे बीच में कुछ नया करना चाहता है। और इस सुबह हम देखने वाले हैं, और क्या है वो जो पीछे मुड़कर देखना मतलब क्या होता है? तो क्या अर्थ है पीछे मुड़कर देखने का, और क्या अर्थ है पिछली बातों पर निर्भर रहना? और दो कहानियों को हम देखना चाहेंगे और दो परिच्छेद। अपने पड़ोसी से कहो और इन कहानियों पर ध्यान दो, इन कहानियों पर ध्यान दो, और यह कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि आपकी सेवा हो इसके द्वारा। और इस सुबह परमेश्वर का वचन हमारे लिए है और वह हमें तैयार करना चाहता है कलीसिया के तौर पर, और जो भी उसने हमारे लिए रखा है ताकि उसके हम पाए। तो पहली कहानी और उत्पत्ति के 19वें अध्याय के 26 से आगे, 23 से 26 तक आइए इसका पीछे रहे हम। उत्पत्ति के 19वें अध्याय का 23 से 26, लूत के सोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपने ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को, संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि के पीछे को देखा और वह नमक का खंभा बन गई। समझ में आई ये कहानी? और परमेश्वर ने इस शहर को खत्म करने को चाहा, और सदोम और गमोरा, और वहां पर लूत की बीवी है, और उसने पीछे मोड़ कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। दूसरी कहानी और गिनती के 14वें अध्याय से 1 से 8 वचन हम देखेंगे, और इस कहानी को भी हम देखते हैं। गिनती का 14वें अध्याय का 1 से 8। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे, और सब इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में रह जाते, मर जाते, या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा का हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां, हमारे बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे अपने आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा और हारून इसराइलियों की सारी मंडली के सामने मुँह के बल पर गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और युपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश में भेद लेने वाले में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ कर इसराइलियों की सारी मंडली के से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचा कर उसे हमें दे देगा। तो ये दो कहानियों में हम ध्यान देंगे। हमने दो परिच्छेदों को पढ़ा। पहली कहानी और वो लूत के बारे में है और उसकी बीवी के बारे में है, और जो दूसरी कहानी है और जिसको हमने पढ़ा, और परमेश्वर के लोग वो वाचाधीप हुई भूमि में जाना, लेकिन वो जंगल में वहाँ बैठे हैं और वो मिस्र देश में वो कैसे जीते थे उसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। अब पहले कहानी को हम देखेंगे सबसे पहले, और कुछ और बातों को देखेंगे, लेकिन हम दूसरी कहानी को भी हम देखेंगे। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, और जो प्रश्न जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं इस सुबह, पीछे मुड़कर देखना उसका अर्थ क्या है। अगर पहली कहानी में हम देखते हैं तो पता चलता है, और लूत की बीवी को हम नमक का खंबा बनते हुए वहां देखते हैं, और उस कहानी के बारे में थोड़ा हम पृष्ठभूमि बताते हैं, और उत्पत्ति के 13वें अध्याय में अब्राहम और उसका भतीजा, और उसका नाम है लूत, वो एक दूसरे से अलग हो गए, और वो उन्होंने निश्चय किया कि वो अलग अलग दिशा में चले जाएंगे। तो लूत ने जो बहुत सुंदर सा दिखने वाला ऐसा प्रदेश चुना, और लूत ने जो यर्दन नदी के बाजू में जो ऐसा प्रदेश था उसको चुन लिया, और जिसका नाम है जोर, और जहाँ पर सदोम और गमोरा भी है। और उत्पत्ति के 14वें अध्याय में हम देखते हैं लूत अब मुश्किल में है, और अब्राहम लूत को छुड़ाने के लिए जाता है, और वो 318 लोगों को लेकर जाता है लूत को छुड़ाने के लिए, और वो उसे छुड़ाता भी है, और लूत वापस सदोम और अमोरा में है। और 19वें अध्याय में उत्पत्ति के हम ये कहानी पढ़ते हैं, और परमेश्वर इस सदोम और अमोरा को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वहां उस शहर में बहुत सारे गंभीर ऐसे बुरी बातें हो रही है, और ऐसे पाप हो रहे हैं जो फिर से होना नहीं चाहिए, और उस प्रकार के पाप आज भी हम देखते हैं, और ऐसे भयानक पाप उस शहर में हो रहे थे। तो इस शहर में दो स्वर्गदूत आते हैं, तो लूत और उसके परिवार को छुड़ाने के लिए वहां वो स्वर्गदूत आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का न्याय इस शहर पर होने वाला है। तो स्वर्गदूत एक विशेष सूचना देते हैं। सबसे पहले लूत को वो पूछते हैं, क्या आपके परिवार में और कोई है जो आप चाहते हैं वो बच जाए, और परमेश्वर इस शहर को नाश करने वाला है, आप चाहते हैं कोई है वहां पर जो आए। और वो दो लोगों के पास जाता है जो उसके होने वाले जमाए दामाद सॉरी और वो दो जन बोलते हैं नहीं हमें नहीं आना है. तो वो जाता है अपने परिवार को लेकर आता है अपनी बीवी और अपने दो बेटियों को. और लूत को वो एक विशेष बात बोलते हैं जो स्वर्गदूत है वो कहते हैं इस प्रकार से और पहली आज्ञा इस प्रकार से है इस शहर से बाहर जाओ और दूसरी आज्ञा और रुको नहीं या धीरे धीरे मत चलो और तीसरी आज्ञा पीछे मुड़कर ना देखना और यह तीन बातें उनको बताई थी. तो लूत अपने परिवार को लेकर जा रहा है और स्पष्ट बात बताने के बाद और जो तुम्हारे पीछे हो रहा है परमेश्वर उसका नाश करने वाला है और जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था और कुछ ऐसा जो तुम्हें पीछे छोड़ना है और तुम्हें आगे जाना है और इतना स्पष्ट कहने पर भी और जैसे मैंने पहले आपको बताया लूत की बीवी ने वो पीछे मुड़ कर देखती है और वो नमक का खंभा बन जाती है और वहाँ पर वो एकदम स्थिर हो गई और शायद अगले दिन बारिश हुई और वो पत्थर जैसे कठोर हो गई. और लूत जो है अपने दो बेटियों को बचा पाया लेकिन यह जो स्त्री लूत की बीवी वो नमक का खंभा बनकर रह गई क्योंकि उसने पीछे मुड़ कर देखा. और भाई और बहनों अलग अलग प्रकार का पीछे मुड़कर देखना होता है और तीन प्रकार की जो बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ पीछे मुड़कर देखने वाली. और भाई और बहनों हम प्रतिज्ञा के लोग हैं और व्यक्तिगत रूप से आपको प्रतिज्ञाएं मिली है और एक कलीसिया होने के नाते हमें प्रतिज्ञाएं दी गई है और बहुत सारे वादे आपने सुने होंगे यहाँ से. और बहुत सारे वादे जैसे यशाया 43 से यशाया 54 से और हाल ही में परमेश्वर हमें कह रहा है बटोरने के लिए और फसल काटने के लिए. हम परमेश्वर के लोग हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को लेकर चलते हैं और कुछ प्रतिज्ञाएं हैं सीधे सीधे बताते हैं और बहुत सारे इस प्रतिज्ञाओं में परमेश्वर हमारी प्रतिक्रिया क्या है वो देखता है. और इस सुबह टेसा और पीटर ने हमें प्रोत्साहित किया. परमेश्वर हमें उसके प्रेम से भरना चाहता है. वो चाहता है तुम आए. आपको नहीं आना है आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है. आप उसके प्रेम से नहीं भरोगे. और हर एक जो वादा या प्रतिज्ञा है उसको प्रतिक्रिया देना आवश्यक है. हम परमेश्वर के लोग हैं हम प्रतिज्ञा के लोग हैं और बहुत सारे समय हम देखते हैं कि वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पा रही है. हमने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं क्यों न सुनी हो और फिर भी हम ऐसे जगह में हैं जहां पर बस सब कुछ वैसे ही दिख रहा है. हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. वो इस प्रकार से पीछे मुड़ कर देखना वो हमें रुकावट ले आता है. तो आगे जो है वो पाने के लिए कुछ जो परमेश्वर करना चाहता है देना चाहता है और कुछ अद्भुत जो हमारे लिए रुका हुआ है और कुछ सुंदर, फिर भी हम पीछे देखते हैं। तो यह एक पहली प्रकार का एक पीछे मुड़कर देखना, मैं आपको बताऊं, और वो ऐसा पीछे मुड़कर देखना जो हमें आगे जाने के लिए रुकावट बन सकता है। और इस प्रकार का जो पीछे मुड़कर देखना है उसी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप कलीसिया में आते हो, आप परमेश्वर की आराधना करते हो, फिर भी आप जानते हो, और 2 साल पहले कुछ दो साल पहले आपको कुछ कहा गया था या बताया गया था, या 2 साल पहले आपके साथ कुछ हुआ था और आप बस वो उस समय में ही आप अपना ध्यान दे रहे हो और तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो और आप उसकी वजह से स्थिर हो गए हो क्योंकि आप जो वो पहले का है उसे पकड़ रहे हो। किसी ने आपको कुछ किया और हम कितना भी आपको प्रोत्साहित क्यों ना करें, लेकिन आप उस बात को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कभी कभी आपके लिए कुछ निर्णय लिया गया और आप उस निर्णय के भाग थे और आपके साथ सही नहीं हुआ और आपको चोट पहुंचाई गई, आपको उसके बारे में अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपने उसको लेकर कुछ भी नहीं किया, आपने उस पर उपाय नहीं किया, और ये सारे समय के दौरान आप उसको लेकर आपके साथ जो हुआ उसको चलते रहे और आप लगातार पीछे मुड़कर देखते रहे और इस बात को कहते हुए कि हाँ पता है उस आदमी ने मेरे साथ क्या किया, मैं फिर से किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, पता है वो बात मेरे साथ हुई, मैं फिर से भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं फिर से वो बात कर नहीं पा रहा हूँ। और आप वो नमक के खंभे जैसे बन गए और वो पीछे जो हुआ उसको आप पकड़े रहे हो, बस आप उसमें ही सोचते रहते हो और वो आप नमक के खंभे जैसे बन गए हो, आप गुस्से का वो खंभा बन गए हो और आप वो दोष से भरा हुआ ऐसा खंभा बन गए हो और आप दुख से वो भर गए हो। कभी कभी या हर समय लोग आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है नहीं ठीक नहीं है, कुछ भी क्यों ना होने दे, कभी कभी और हमें लगता है हम पूरी तरह थक गए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ बातें बोली गई है या कही गई है पहले के समय में, 2 साल पहले क्यों, या 5 साल पहले हो, या 10 साल पहले, और हमने अभी तक उन बातों को छोड़ा नहीं है, हम अभी भी वो उस समय में रह रहे हैं और हम सोच नहीं पा रहे कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है, और हम भविष्य को पकड़ नहीं पा रहे हैं और वादे हमारे लिए है और वो है हमारे लिए वहाँ, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पहले हुआ है वो उसने हमको चुरा लिया है, हम उसे पकड़े गए हैं उन सारी यादों से जो पहले हुआ था, और हम उन बातों में पकड़े हुए हैं जो हमारे साथ सही नहीं हुआ था, उन बातों को लेकर, और वो हमें चुरा लेता है, परमेश्वर के उस प्रेम से हमें चुरा लेता है, और वो हमें चुरा लेता है, और परमेश्वर के आत्मा में आनंद करना, उससे हम पीछे हट जाते हैं। कभी कभी हम उत्साहित भी नहीं होते हैं। हम बहुत सारे समय देखते हैं कि कुछ लोग हैं उत्साहित है परमेश्वर के लिए, तो मैं क्यों नहीं उत्साहित हो रहा हूँ, क्या परमेश्वर कर रहा है, और जो परमेश्वर कर रहा है उसमें मैं जोशीला क्यों नहीं हो रहा हूँ। वो इसलिए है हम अभी भी उस समय में जी रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है और जो पहले हुआ उसे भूल जाओ और उस पर आप ध्यान मत दो, क्योंकि मैं नई बातें कर रहा हूं। हम किसी भी तरह इस नए भाग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम जो पीछे हुआ है उसे छोड़ ना दे। और वो लोग हमारे आपके जीवन में जो आए, आपके दोस्त और काम के समय आपके साथ सहकर्मी, कुछ आपके साथ उन्होंने किया होगा और आप उनके खिलाफ एक प्रकार से तिरस्कार रखे हुए हैं, और इस देश के लोगों को देखते हुए हम उस जगह में पहुंच गए हैं, हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने बनाया है, हम बढ़ गए हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो पहले हुआ है। हम बहुत ही एक प्रकार से रहस्यमय बन जाते हैं। हम सोचते हैं वो आदमी क्या करने वाला है मेरे साथ, क्या मैंने जो पहले अनुभव किया फिर से मैं उस बात को अनुभव करने वाला हूँ, और हम पीछे हट जाते हैं। हम नहीं चाहते फिर से हमें चोट आए। हम भविष्य के बारे में बात करते हैं, जब तक कि मुझे कुछ कहने के लिए वहाँ पर नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, और हम उस नमक के खंभे जैसे हो जाते हैं। लूत की बीवी, उसने पीछे मुड़ कर देखा और वहाँ पर वो स्थिर हो गई और वहाँ पर रुक गई, और वो इस प्रकार से पीछे मुड़ कर देखना है, वो हमें मददगार नहीं है, और हम चीज़ों को लेकर ज़्यादा ही कुछ परेशान हो जाते हैं और बहुत ही हम संवेदनाशील बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम आत्मिक दृष्टि से थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं और हम कम 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 होते जाते हैं आत्मिक जीवन में, और परमेश्वर की बातों से हम जोशीले नहीं बनते हैं। रविवार भला है, लेकिन सोमवार से शनिवार तक और बार बार वही बात है, हम रुक जाते हैं, हम वहीं पर रह जाते हैं, और आप रुक जाते हैं वहीं पर और आप देखना चाहते कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या करना चाहता है। आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। कौन है वो व्यक्ति, या मेरे सहकर्मी, कौन है वो मेरा बॉस, क्या वही बॉस मेरे साथ रहने वाला है, या कलीसिया में कौन है ऐसा व्यक्ति, क्या वो फिर से मुझे दुख देने वाला है। हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम हमारे पिछले जीवन पर ही निर्भर रह रहे हैं, और हम आगे की ओर बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। और लूत की बीवी, उसने पीछे मुड़ कर देखा और वो वहीं पर रुक गई और वो वहीं पर स्थिर हो गई। और इस प्रकार का जो पीछे मुड़ कर देखना है, और वो हमें फलवंत नहीं बनाता है, और हम ऐसे मोड़ में आ जाते हैं कि हमें यीशु के लिए कुछ करना नहीं है, और हम फलवंत नहीं बनते। कभी कभी आप सोचते हैं कुछ तो होता है, आप उत्साहित हो जाते हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि आप बढ़ रहे, आगे जा रहे हैं और आपको लगता है कि अभी सब कुछ सही होते जाएगा, लेकिन कभी भी कुछ तो आपको कहता है तो आपको वो पुरानी बातें फिर से याद आ जाती है, आप फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो आपके जीवन में कुछ हुआ उस पर आपने उपाय नहीं किया था। और इन सारी बातों का उत्तर ये है, और अगर आप देखना चाहते हैं परमेश्वर का जो वादा है आपके जीवन में उसे पूरा होते हुए और व्यक्तिगत तौर पर, और आपको आगे बढ़ना है जहां परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़े, और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमें दी है उसे हमें पूरा अगर होते हुए देखना है, तो इस प्रकार से जो पीछे मुड़कर देखना है वो हमें मदद नहीं करेगा। और सारी बातों का उत्तर इस प्रकार से है, और इन सारी बातों के लिए उत्तर है वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह क्रूस पर, उसकी माँ वहां पर है और उसके शिष्य वहां पर खड़े हैं, और वह उसे महिमा मिली, उसको महिमा इसलिए मिली कि उसने दर्द स्वीकार किया, दर्द को सहा, इतना सारा उसे कुछ कहा गया था और उसे दोषी ठहराया गया, फिर भी वह दोष भरा नहीं था और उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, और फिर भी उस पर आरोप लगाया गया। और वहां पर बाजू में और एक व्यक्ति था और जो हत्या करने वाला, और उसका नाम बरब्बस था, और उसे जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन यीशु को क्रूस पर ले जाया गया और लोगों ने उस पर थूका और लोगों ने उसे मारा और खून उसके शरीर से बह रहा था और उन्होंने उसे लिया और उसके हाथों में और पैरों में कीले मारे, और वो उसके योग्य नहीं था। और जब वह क्रूस पर इस तरीके से लटक रहा था, क्या कहा उसने, क्या कहा उसने, पिता उन्हें क्षमा करो क्योंकि वो नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। और हम उन सारे प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए नहीं देखने वाले हैं अगर हम वो क्षमा को स्वीकार करें और हम दूसरों को भी क्षमा करें। और पिछले रविवार को मैंने वो प्रचार बताया था और क्षमा को लेकर, क्षमा दूसरों को देने को लेकर, भाई और बहनों, और राष्ट्र और शहर हमारे लिए, वन नेशन के लिए रुके हुए हैं, और यह जो आशा का संदेश है वो मिलने के लिए लोग रुके हुए हैं, और परमेश्वर ने जो हमें करने के लिए बुलाया है वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे अगर हम हमारे पिछले जीवन को लेकर वहीं पर रुके हैं। और यह समय है हमको निकलकर आगे जाना है। और दूसरी कहानी को हम देखते हैं, आप कैसे हैं, आपको समझ में आ रहा है, क्या आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी कहानी को हम देखते हैं, और दूसरी कहानी तो वहां पर हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो पीछे मुड़कर देखना है और वो इस प्रकार का पीछे मुड़कर देखना हमें प्रतिज्ञा की भूमि में जाने नहीं देगा। और गिनती के 14वें अध्याय में हमने देखा और इसराइल के लोग हैं वहां पर जब यूसुफ मर गया और इसराइल के लोग मिस्र देश में थे और वो मिस्र देश के लोगों के दास बन गए, गुलाम बन गए और वो 24 घंटे उनकी सेवा कर रहे थे और उनको कुछ भी वहाँ छुटकारा या आराम नहीं मिला और उन पर काफ़ी अत्याचार भी हुए और उनके खिलाफ बुरी बातें की गई और परमेश्वर ने उनको एक अगुवा दिया, परमेश्वर ने उन्हें मूसा दे दिया और हारून भी उन्हें दे दिया और मूसा और हारून ने इसराइली लोगों को अगुवाई की ताकि वो मिस्र देश से बाहर आए और जहाँ पर उन्हें 24 घंटे वहाँ पर पीड़ा होती थी और मिस्र देश के लोगों से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा लेकर बाहर आया और परमेश्वर के अद्भुत कार्य होते हुए उन्होंने देखा और मिस्र देश के लोगों पर कितने सारे महामारी लेकर आया वो भी उन्होंने देखा और उन्होंने यह भी देखा कि लाल समंदर को दो भागों में बांटकर वो सूखे जमीन में चल कर गए और रेगिस्तान में परमेश्वर ने वहां पर पानी उन्हें दे दिया और परमेश्वर ने उन्हें खाना भी दिया और उस रेगिस्तान में ऐसी जगह में वहां पर आकाश से उनके लिए खाना मन्ना आया और उनको नॉनवेज खाने का था और परमेश्वर ने उनको बटेरे भी दिए और अद्भुत तरीके से पत्थर से पानी आ गया और परमेश्वर के हाथ को उन्होंने देखा था और उन्होंने आग के खंभे को देखा था और परमेश्वर अलग अलग रीति से उनकी अगुवाई कर रहा था। और जो परिच्छेद हमने पढ़ा और इसराइल के जो लोग हैं अब बात कर रहे हैं पीछे वापस जाने की, और वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वहाँ पर 3 बार वो बात लिखा है कि हम लोग चलो वापस जाएंगे मिस्र देश। पहला कारण मिस्र देश में जाने का ये है और वो है वो कुड़कुड़ाने लगे और वो शिकायत करने लगे खाने को लेकर और वो कहने लगे तुमने हमें यहाँ लेकर आए, मिस्र देश में बहुत अच्छा था और वहाँ पर अच्छे फल खाए हमने, लेकिन अब देखो और बस प्रतिदिन हमको माना खाना पड़ता है, हर दिन वही खाने को मिलता है और परमेश्वर ने उन्हें बटेरे दिए और उन्होंने कहा हाँ फिर वही खाना हर दिन और वो शिकायत करने लगे कुड़कुड़ाने लगे खाने को लेकर और वो कहने लगे कि मिस्र देश में हम बहुत ही अच्छा खाना खाते थे और वो शिकायत करने लगे और वो कहने लगे हमें वापस जाना है। दूसरी बात, और उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया क्योंकि उन्होंने देखा था कि मिस्र देश के लोग जो थे वो ऐसे ही जानवरों की मूर्तियों की आराधना करते थे और वो सोचने लगे कहाँ गया हमारा अगुवा, मालूम नहीं कहाँ गया, हम रुक नहीं पाएंगे और हमारे लिए हम एक देवता बनाएंगे। और मिस्र देश में उन्होंने देखा था किस प्रकार से वहाँ पर देवता थे तो उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया आराधना करने के लिए और अब वो आधे रास्ते में पहुंच गए हैं वाचा की भूमि में पहुंचने के लिए, लेकिन अब भी वो अपने मन में वो मिस्र देश में ही जी रहे हैं, और वहां मिस्र देश में जैसा होता था वैसा अभी भी वो चाहते हैं। तीसरी बात, और ये कुड़कुड़ाने की वजह से वो देख रहे हैं कि वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, और परमेश्वर मूसा को कहता है उनमें से 12 लोगों को चुनो, कम से कम जाकर देखो मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ। तो 12 लोगों को वो भेजते हैं, और 12 लोगों में से वहाँ 10 लोग है, वो इस प्रकार से कहते नहीं 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 हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, वहाँ देखो कितने बड़ी बड़ी दीवारें हैं, हम उनको नीचे नहीं गिरा सकते हैं। और वो वहाँ पर जो मनुष्य पुरुष है वो इतने बड़े ताकतवर है, वो हमसे ताकतवर है, हम उन पर विजय नहीं कर पाएंगे। और यहोशू और कालेब उन्होंने कहा पता है परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया है, और इतना सारा कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उस वाचा की भूमि में लाने के लिए। हाँ, इस भूमि में हमारे लिए दाख मधु और दूध होगा, लेकिन वो लोग हैं वो बैठे हैं एक दूसरे की शिकायत करते हुए, और वो जो वाचा की भूमि है उसके बारे में भी शिकायत कर रहे हैं, और उनको पीछे जाना है। कभी कभी हमारा जो पहले जो बातें हुई है उसको हम आदर्श बना लेते हैं, और वो इस प्रकार से जो पीछे मुड़कर देखने की बात है वो हमें मददगार नहीं होती है। मैं यह नहीं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि पहले जो हुआ है वो हमेशा बुरा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। और कुछ भली अच्छी बातें भी हुई है जैसे वो बता रहे थे, लेकिन वो पहले का जो जीवन है उसको एक मूर्ति पूजा जैसे कर रहे थे, वो देख नहीं पा रहे कि आगे को परमेश्वर कितनी बड़ी बातें करने वाला है। और वो और एक अलग प्रकार से हम पीछे मुड़ कर देख सकते हैं, जहाँ पर हम कुछ बातों को मूर्ति के रूप में बना देते हैं। पता है वो एक बहुत बड़ी महासभा हुई थी, और पता है वो उस समय, और हम 400 लोग थे, लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पर है, और परमेश्वर ये है प्रतिज्ञाएं हमें कह रहा है, और हमें फसल देने की बात कर रहा है, और उस प्रकार का जो पीछे मुड़कर देखना है वो हमें मददगार नहीं होगा। अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो वाचा की भूमि में हम नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एक और प्रकार से जो पीछे मुड़कर देखना है वो अच्छा वाला है, और वो इस प्रकार से पीछे मुड़कर देखना है, हम भजन 78 में उसको देखते हैं, और वो उस तरीके से पीछे मुड़कर देखना वो हमें आगे वाली भूमि में लेकर जाएगा। और भजन 78 में और परमेश्वर लोगों से कहता है और लोगों को याद दिलाता है क्या परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, उसकी याद दिलाता है, ताकि तुम जब पीछे मुड़कर देखोगे और इस प्रकार से वो पीछे मुड़कर देखने लगे तो वो इस प्रकार से सोचने लगे कि अगर परमेश्वर वो कर सकता है जो पहले उसने किया, तो आगे जो होने वाला है उसे भी परमेश्वर कर पाएगा। और उस प्रकार से पीछे मुड़कर देखना हमारे लिए सही है। हमने पहले हमारे जीवन पर परमेश्वर के हाथ को देखा है, लेकिन अब और वही परमेश्वर जो था, जो है और जो आगे को होने वाला है, और भाइयों और बहनों, और इस प्रकार से जो पीछे मुड़कर देखना है वो हमें आगे की ओर लेके जाएगा और भविष्य में लेकर जाएगा। और वन नेशन के लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है, और परमेश्वर इस कलीसिया को ऊंचे स्थान पर लाना चाहता है। और यह जो कलीसिया है वो पत्थरों से बनी हुई नहीं है, और वो लोगों से बनी हुई है। और आपका जीवन और परमेश्वर जो आपके जीवन में कर रहा है, और वो काफी बड़ी बात है जो आपके जीवन में कर रहा है वन नेशन को आगे लेके जाने के लिए। हाँ, हमें पीछे मुड़कर देखना है, लेकिन इस प्रकार से जो पीछे मुड़कर देखना है, जो भजन 78 में लिखा है, और भजन 78 में लिखा है, और वहां पर लिखा है, और आपके आने वाली पीढ़ी को आप इन बातों की याद दिलाओ कि क्या भली बातें परमेश्वर ने आपके साथ पहले की है, तो ताकि वो लोग भी याद रखेंगे, और अभी जो परमेश्वर उनके साथ कर रहा है वो तुम्हें याद देने के लिए और भविष्य की पीढ़ी को मजबूत करने के लिए। भाई और बहनों, बदलाव इतना आसान नहीं होता है, या एक जगह से दूसरे जगह जाना इतना आसान नहीं होता है, और हम जो मनुष्य है हमें वो बदलाव अच्छा नहीं लगता। कभी अगर हम कुर्सियां इस प्रकार से रखेंगे तो हम बोलते हैं, नहीं पहले था वो अच्छा था। कभी कभी और कोई आ जाता है, हम कहते हैं कि हाँ हाँ वो व्यक्ति अच्छा है, और ये परिवर्तन हम आसान से उसे स्वीकारते नहीं है। और तीन प्रकार के लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं परिवर्तन को, और एक जो समूह है वो बहुत उत्साहित हो जाता है, और वो ये नहीं सुनना चाहती है वो कहाँ जा रहे हैं, बस उनको बस जाना है, और हमें बारीकाई से नहीं जानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम प्रोत्साहित है, जोशीले हो गए हैं। और दूसरा एक समूह लोगों का ऐसा है, और उनको बदल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहले जैसी चीजें होती थी वो उनको पसंद थी, और उनको यह परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है, और उसके लिए परमेश्वर चाहिए। और परमेश्वर हमेशा नया कुछ कर रहा है, और परमेश्वर वो जोश का परमेश्वर है, और वो कुछ नया कर रहा है, और वही वो कह रहा है, मैं नई बातें कर रहा हूँ, तो पिछली बातों पर निर्भर ना रहना। और इस सुबह परमेश्वर हमारे जो पीछे हुआ है उसके साथ कुछ करना चाहता है, और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, ताकि आप उस पिछले जीवन से पूरी तरह छुटकारा पाओगे, या कुछ बातें जो आपके खिलाफ बोली गई थी, या कुछ बातें आपके विरोध में कुछ लोगों के द्वारा की गई थी, या आपके काम के इस जगह में, और परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, ताकि हम आगे की ओर देखते रहे, हम आगे बढ़ सके। आइए हम खड़े हो जाए। आप चाहते हैं प्रतिज्ञा की भूमि में हम प्रवेश करें, और परमेश्वर ने जो वादा किया है ऐसी जगह में हम जाना चाहते हैं? क्या आप जाना चाहते हैं जहां परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है? प्रभु की स्तुति हो। और हमें वो तीसरे प्रकार का जो पीछे मुड़कर देखना है वो हमें मदद करेगा। आइए हम परमेश्वर के सामने आए, राजीव आकर कुछ गीत गाए, और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा हमें वो छुटकारा देगा, और पवित्र आत्मा ही हमारे जो पुराने दुख है, दर्द है, उसे निकाल सकता है, उसे अलग कर सकता है, और जो पहले हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई थी उसे निकाल सकता है। और परमेश्वर कह रहा है उसे भूल जाओ, उस दर्द को, दुख को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए नई बातें कर रहा हूँ। अपनी आंखें बंद रखे और परमेश्वर के लिए मांगे, उसकी उपस्थिति के लिए मांगे। और अपने आप परमेश्वर से बातें करते यह कहिए, प्रभु आओ मेरे जीवन में और मेरे इन दुख को निकाल दो, मेरे इन बातों को, इन जख्मों को हल, और यह जो पीछे हुआ है उसे छोड़ने के लिए मुझे मदद करना, और मुझे मदद करना ताकि इन सारी बातों को मैं छोड़ सकूं। आइए अपने साथ परमेश्वर के साथ बात कीजिए और उन बातों को आप छोड़ दीजिए, उन बातों को रिहा कर दीजिए, जो आपको दुख पीड़ा हुई थी या किसी ने कुछ कहा था उनको आप छोड़ दो परमेश्वर के लिए। और जैसे यह गीत हम गाएंगे, भरोसा रखें परमेश्वर का आत्मा हमें छुएगा, और कुछ ही मिनटों में हम समाप्त करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर कर रहा है उसे हम खोए नहीं, और उसे हम खोए नहीं।
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे,
तेरे पास,
तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे,
हर दिन, हर पल,
हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी महिमा गाती रहे यीशुआ 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 यीशुआ।